ये श्री श्री राधा गोकुलानंद का मंदिर है। यहाँ कृष्ण का नाम गोकुल आनंद है। जो गोकुल में आनंद लेते हैं और जो गोकुल के निवासियों को आनंद देते हैं। गोकुल कृष्ण की नगरी है, कृष्ण का धाम है और वहां पे सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। और यहां राधा गोकुल आनंद मंदिर में हम वही वातावरण निर्माण करना चाहते हैं जो कि गोकुल में था, बल्कि है, क्योंकि भगवान का धाम सदा विद्यमान रहता है। हालांकि श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आकर लीला करके अपने धाम में लौट कर चले गए, फिर भी उनका धाम, उनकी लीला अभी तक वृंदावन में है, वो नष्ट नहीं हुई है। भगवान श्री कृष्ण का धाम कभी भी नष्ट नहीं होता है। और गोकुल की पहचान क्या है? गोकुल की पहचान है जहां लोग गोकुल आनंद श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं और जहां कृष्ण के आनंद में ही वो आनंद लेते हैं, उसे गोकुल कहते हैं। गायों की नगरी, जहां गोपाल और गोविंद हमारे ध्येय हो जाते हैं। गोकुल के निवासियों को भगवान श्री कृष्ण के अलावा कुछ मालूम ही नहीं था। हर चीज वो केवल उनके लिए करते थे। और भारत में शायद ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने श्री कृष्ण का नाम नहीं सुना हो, जिसने भगवत गीता का नाम नहीं सुना हो, परंतु फिर भी श्री कृष्ण के बारे में कितने सारे गलत फहमियां हैं, भ्रांतियां हैं। लोग श्री कृष्ण को जानते नहीं हैं, उनकी अलग अलग लीलाओं को गलत समझते हैं। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो कृष्ण तत्व को नहीं जानते हैं, वो इतना प्रचार करते हैं अपने कविताओं के माध्यम से, अपने उपन्यास, टीका और पुस्तकों के माध्यम से और अपने अन्य भाषणों के माध्यम से कि उन्होंने सारे समाज में बड़ा उत्पात पैदा कर दिया है। अगर हमें श्री कृष्ण के बारे में जानना है और उनको सही तरह से समझना है तो केवल भगवान के भक्तों के मुख से हमें सुनना चाहिए। जो भगवान के भक्त परंपरा में आ रहे हैं और जो ऐसे भक्तों के संग में रहकर भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के संग में आकर हमें श्री कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए। अलग अलग जगह पे हजारों लाखों की संख्या में जाकर लोग अलग अलग तरह के प्रवचन वगैरह सुनते हैं, अलग अलग संस्थाओं के किताब ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं और इसका फल यही होता है कि उनकी भ्रांति बढ़ जाती है और उनको पता नहीं चलता है कि आध्यात्मिक तत्व क्या है। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के संग में आते हैं तो सब कुछ साफ साफ हो जाता है। जैसे कि जब रात के अंधकार के बाद में जब सूर्योदय हो जाता है तो जो भी भ्रांतियां, भय, अज्ञान हमारे मन में हुआ होगा वो नष्ट हो जाता है। अवैष्णव या जो अभक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उसके मुख से कभी भी हमें श्री कृष्ण के बारे में सुनना नहीं चाहिए। अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथा पयः। पुराणों में बताया गया है कि हरि कथा बहुत शुद्ध है, पूतम हरि कथामृतम, और इसका श्रवण करने से कोई भी शुद्ध हो सकता है, चाहे वो सबसे बड़ा पापी व्यक्ति भी क्यों न हो। परंतु अगर यही हरि कथा एक ऐसे व्यक्ति के मुख से हम सुनेंगे जिसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है और जिसने श्री कृष्ण को सही तरह से समझा नहीं है, तो वही कथा जो कि साधारणतः शुद्ध है वही हमारे हृदय में विष पैदा करेगा। जैसे कि जब हम दूध का पान करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे दूध का सेवन करेंगे कि जिसको एक जहरीले सांप ने चख दिया हो तो क्या होगा? क्योंकि उस दूध में उस सांप का जहर भर गया है, और उसी दूध का पान अगर हम करेंगे तो हमारे अंदर जहर चले जाएगा और पौष्टिक बनने के बजाय वो दूध हमारा नुकसान करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति गोकुल में जाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंत में सदा श्री कृष्ण के चरणों में रहना चाहते हैं, उनको जानना चाहिए कि इधर उधर यहां वहां न जाएं, कथा सुनने के लिए इधर उधर के प्रवचन पुस्तकें न पढ़ें न सुने, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हो सकता है। बाहरी रूप से हम ये नहीं जानते कि वास्तव में जो प्रवचन करने वाला है या जो किताब लिखने वाला है उसके हृदय में कैसी भावना है, वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या सोचता है, उसके मन में कौन से सिद्धांत हैं, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए इधर उधर जाने की जो इच्छा है उसे हमें दमन कर लेना चाहिए, और भले कोई व्यक्ति कृष्ण कृष्ण भी कहे, संकीर्तन भी करे, लेकिन जब तक वो प्रामाणिक संप्रदाय में परंपरा में नहीं आता है तब तक ऐसे व्यक्ति से हरि कथा सुनना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। इस संदर्भ में कई कहानियां हैं, इनमें से एक दो शायद आपको आज हम सुनाने का प्रयास करेंगे। जब वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे तो वो जगन्नाथपुरी में रहा करते थे संन्यास लेने के बाद में, और उनके कई भक्त उनके साथ में आकर रहते थे। चैतन्य महाप्रभु दिन भर नगर संकीर्तन किया करते थे, जप किया करते थे, अपने भक्तों के संग में कृष्ण कथा किया करते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन करते, और ऐसे समय बीत जाता। जगह जगह से वैष्णव आकर उनका संग लेते, उनका दर्शन करते और उनके साथ संकीर्तन में शामिल होते। तो चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही अच्छे शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था भगवान आचार्य। ये ब्राह्मण कुल के थे, बड़े आर्य सज्जन सभ्य थे, सद्गुण संपन्न थे और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, और उनको चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में बहुत श्रद्धा थी, और इस तरह से वो वहां रहकर भक्तों के संग में आनंद लेते थे। ये भगवान आचार्य शतानंद खान नाम के एक बहुत ही अमीर जमींदार के पुत्र थे। शतानंद खान एक भौतिकवादी व्यक्ति थे, विषयी व्यक्ति जिनको केवल भोग में रुचि थी, उनको भक्ति में कुछ भी रुचि नहीं थी। लेकिन उनका पुत्र भगवान आचार्य ऐसे नहीं था। भगवान आचार्य अपने पिताजी से बिल्कुल अलग थे। पिताजी को बिल्कुल रुचि नहीं भक्ति में, केवल विषय भोग में रुचि, और भगवान आचार्य को विषय भोग में रुचि नहीं और केवल भक्ति में रुचि। ऐसे भी कभी कभी देखा जाता है संसार में, पिता माता को रुचि हो तो बच्चों को नहीं, बच्चों को है तो माता पिता को नहीं। तो इस प्रकार से भगवान आचार्य के एक जो छोटे भाई थे जिनका नाम था गोपाल भट्टाचार्य, वहां उनसे मिलने आए जगन्नाथपुरी में। अब गोपाल भट्टाचार्य बड़े विद्वान थे लेकिन भक्त नहीं थे भगवान के। उन्होंने बनारस में जाकर काशी में उन्होंने वेदांत का पाठ किया था और कई सालों तक अध्ययन करके संस्कृत के और वेदांत के बड़े पंडित माने जाने विद्वान हो गए थे। अभी आप तो जानते हैं कि काशी या बनारस हालांकि इतना बड़ा तीर्थ स्थान है कई महत्वपूर्ण मंदिर और तीर्थ स्थली वहां पर हैं, लेकिन फिर भी बनारस या काशी मायावादियों की राजधानी है। मायावादी मतलब कौन? मायावादी मतलब वो लोग जो समझते हैं कि भगवान निराकार हैं, जो समझते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, और वास्तव में हमारे जीवन की परिपूर्णता है कि मृत्यु के बाद हम भगवान में लीन हो जाएं और हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाए। मायावाद मतलब वो वाद, वो तर्क जो ऐसे बताता है कि भगवान जब इस ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं तो उनका शरीर भी माया का बना हुआ है, जड़ पदार्थों का बना हुआ है, जैसे कि हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर जड़ पदार्थों का बना हुआ है, तो ये मायावादी लोग, निराकारवादी लोग सोचते हैं कि भगवान के जो अवतार होते हैं उनका भी शरीर इसी प्रकार से होता है। भगवान को जानते नहीं है वो, और इसलिए वो ऐसे निराकारवाद का प्रचार करते हैं। आजकल ज्यादातर ये लोग शंकराचार्य के अनुयायी हैं, आदि शंकराचार्य जो कई साल पहले दक्षिण भारत में आए थे। शंकराचार्य ने वेदांत के ऊपर एक टीका लिखी थी जिसका नाम है शारीरक भाष्य, और ये शारीरक भाष्य काशी में और अन्य स्थलों में जहां ये मायावादी लोग रहते हैं वहां पर बहुत ही इसका पठन और कथन बहुत प्रचलित है। तो इस प्रकार से शारीरक भाष्य में बड़े विद्वान होकर गोपाल भट्टाचार्य जगन्नाथपुरी में आए और भगवान आचार्य के घर में रहने लगे। तो भगवान आचार्य ने सोचा कि चलो इनको चैतन्य महाप्रभु से मिला दें, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करेंगे तो अच्छा होगा। जब चैतन्य महाप्रभु के सामने भगवान आचार्य ने गोपाल भट्टाचार्य को लाया तो अंदर से चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु केवल भक्तों को मिलना चाहते थे, भक्तों के अलावा किसी और को मिलना नहीं चाहते थे। ये भक्त का स्वभाव होता है, भक्त केवल भक्तों के संग में रहना चाहता है, बाहर की दुनिया में रहना नहीं चाहता है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भक्त की भूमिका निभा रहे थे तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। तो वो जानते थे कि ये जो गोपाल भट्टाचार्य है ब्राह्मण है, इतना विद्वान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मायावादी है। तो अंदर से उनको दुख हुआ और उनको प्रसन्नता नहीं हुई उनसे मिलकर, लेकिन क्योंकि ये भगवान आचार्य के भाई थे और भगवान आचार्य चैतन्य महाप्रभु के इतने अच्छे भक्त थे तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ठीक है, भगवान आचार्य को दुखी नहीं करना चाहिए, तो बाहरी रूप से हंसे। ऐसे प्रतीत हुआ कि मानो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए गोपाल भट्टाचार्य से मिलकर, लेकिन ऐसे नहीं था। वैसे बाहरी रूप से कई लोग भक्त जैसे लगते हैं और अपने आप को भक्त कह के घोषित भी करते हैं कि मैं भी भक्त हूं, हम भी कृष्ण को मानते हैं, लेकिन उनके मन में कृष्ण के बारे में क्या विचार है, क्या कृष्ण के तत्व को वास्तव में वो जानते हैं, ये प्रश्न है। क्या वो कृष्ण को निराकार मानते हैं? क्या कृष्ण के व्यक्तित्व को वो समझते हैं वास्तव में? तो जब तक कोई व्यक्ति संप्रदाय में सही गुरु शिष्य परंपरा में आकर भगवान श्री कृष्ण और भगवद गीता के बारे में श्रवण नहीं करता तब तक वो तत्वतः ये नहीं जान पाएगा कि भगवान कौन है। एक बार ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के पास में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रामदास। उनका नाम था रामदास और वास्तव में थे भी रामदास, क्योंकि सदा राम का नाम उनके होठों पर रहता था। राम 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 राम, दिन भर 24 घंटे राम का नाम लेते थे। तो जब गदाधर पंडित जो कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, उनकी मुलाकात ये रामदास से हुई तो गदाधर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि इनकी मुलाकात मुझे चैतन्य महाप्रभु से करानी चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु के पास में लेकर आए तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, परमात्मा है, सबके हृदय में है, वो भी रामदास को पहचान गए। कि बाहरी रूप से तो राम का नाम ले रहे हैं लेकिन अंदर से मायावादी है, अंदर से इच्छा रख रहे हैं कि मैं मृत्यु के बाद में भगवान में लीन हो जाऊं। अंततः राम भी, राम का शरीर हमारे शरीर की तरह है। जब वही निराकार ब्रह्म यहां भौतिक जगत में प्रकट होता है तो राम कृष्ण जैसे शरीर धारण करता है, जैसे कि हमारे शरीर हैं, वैसे हम में और राम में कोई अंतर नहीं है, हम भी राम हैं। तो ये सूक्ष्म रूप से ये भावना ये रामदास के हृदय में थी, जिसको गदाधर पंडित जैसे महाभागवत भी पहचान नहीं पाए। तो देखिए, जब गदाधर पंडित नहीं पहचान पाए तो हम जैसे साधारण भक्त कैसे समझ पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को, श्री राम को जानता हूं, हम कैसे पहचान पाएंगे कि वो वास्तव में भक्त है या मायावादी है? बहुत मुश्किल। लेकिन चैतन्य महाप्रभु समझ पाए, और उन्होंने रामदास विप्र से अच्छी तरह से बात नहीं की, उनसे मिले नहीं वो। लेकिन यहां पर भगवान आचार्य आए थे साथ में, भगवान आचार्य को दुखी नहीं करना चाहते थे तो थोड़ा बहुत हंसे, दो शब्द बोले और चले गए। उधर भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास में गोपाल भट्टाचार्य को ले आए। इसके पहले वो खुद गए उनके पास। स्वरूप दामोदर गोस्वामी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के बड़े शुद्ध भक्त थे, उनके सेक्रेटरी थे। जो भी कुछ चैतन्य महाप्रभु के पास आता था उनको पहले स्वरूप दामोदर के गोस्वामी के पास उनको मिलना पड़ता था। तो स्वरूप दामोदर के पास भगवान आचार्य आए। अब भगवान आचार्य का स्वभाव ऐसे था कि वो बड़े सरल और सीधे साधे भोले भाले भक्त थे। वैसे गोलोक वृंदावन के एक गोप के, ग्वाल बाल के वो अवतार थे, और इस भाव में कभी कभी चैतन्य महाप्रभु से निकट से भी वो वार्तालाप करते थे या व्यवहार करते थे। तो स्वरूप दामोदर के पास में जब ये भोले भाले भगवान आचार्य आए और बोलने लगे कि मेरा भाई गोपाल भट्टाचार्य अभी काशी से आया है, वेदांत में बड़ा विद्वान है, और मैं चाहता हूं कि हम सब भक्त उनकी टीका सुने, उनका भाष्य सुने। तो जब स्वरूप दामोदर ने यह सुना तो उनको थोड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगे, बुद्धि भ्रष्ट हो लो तुम्हार गोपाल संगे, कि ये गोपाल भट्टाचार्य के संग में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मायावादी भाष्य सुनते उपजिलो रंगे, कि तुम्हारे मन में मायावाद भाष्य सुनने की इच्छा जागृत हो गई है, तुम तो पागल हो गए हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। तो जब समझाया स्वरूप दामोदर में तो फिर भी भगवान आचार्य नहीं माने। स्वरूप दामोदर कहने लगे कि मायावादी लोग जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में जीव अपने आप को सेवक समझता है और भगवान को प्रभु समझता है, लेकिन मायावादी भाष्य में ये सेव्य और सेवक की भावना नष्ट हो जाती है। क्योंकि मायावादी लोग कहते हैं कि हम भी भगवान हैं, हम भी जब भगवान हैं तो हम भगवान की सेवा क्यों करें। सेवक और सेव्य, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, तो ऐसी भावना अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे मन में जो भक्ति की भावना है वो ऐसे मायावादी भाष्य सुनकर नष्ट हो जाता है। इतना समझाने पर भी भगवान आचार्य समझे नहीं, तो वो बोलने लगे, नहीं ये जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हम तो पक्के भक्त हैं, हमारे हृदय में श्री कृष्ण के चरणों के प्रति बहुत निष्ठा है, हम कभी हिल नहीं सकते हैं। ऐसे भी हम देखा जाते, कभी कभी भक्त बोलते हैं कि हम तो कभी माया में गिर नहीं सकते हैं, हम तो बड़े पक्के हैं, हम कभी इधर उधर जाएंगे भी हमारी भक्ति भावना नष्ट नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें बहुत होशियार रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने एक बार किसी और संदर्भ में चेतावनी दी थी सारे भक्तों को, मायावादी भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, मायावादी भाष्य सुनेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा आपके भक्ति का। क्योंकि इतना सूक्ष्म जहर है कि एक बार हमारे कर्णों के माध्यम से हृदय में पहुंच जाता है, एक ऐसी बीमारी हृदय में खड़ी कर देती है जिसको निकालना बहुत कठिन है। तो फिर स्वरूप दामोदर को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने वो डांटने लगे कि ठीक है आपकी निष्ठा अच्छी है, लेकिन फिर भी ये जो मायावादी लोग हैं, क्योंकि भक्त और भगवान में अंतर नहीं देखते हैं और वो यही कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्म निराकार है और ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है, ऐसा सब सुनकर हमें कोई वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती हमारी, और फिर भक्ति का जागरण तो होता ही नहीं है। इसलिए हमें ऐसे ग्रंथों में, ऐसे भाषण में इत्यादि रुचि बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, रुचि नहीं लेनी चाहिए। इस प्रकार से जब स्वरूप दामोदर ने कहा कि देखो ये सारी चीजें जब भक्त सुनते हैं तो उनका हृदय टूट जाता है, इसलिए तुम्हें गोपाल भट्टाचार्य से बिल्कुल वेदांत टीका नहीं सुननी चाहिए, ये सारा जो भाषण है ये सुनकर फिर भगवान आचार्य को बुरा लगा और क्षमा याचना की स्वरूप दामोदर से, और फिर अगले ही दिन उन्होंने अपने भाई को वापस काशी भेज दिया, चले जाओ इधर रहोगे तो मेरे भक्ति के ऊपर खतरा है, तुम दिन भर मेरा मन विचलित करोगे या निराकार ब्रह्म ओम शांति शांति करके सब मेरा भक्ति भाव नष्ट करोगे, चले जाओ तुम अपने विद्वत्ता अपने पास रखो और काशी में जाके मायावादियों के लोग में संग करो जाओ। तो फिर गोपाल भट्टाचार्य वापस चले गए। तो उसी तरह से हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मायावादी लोग जो होते हैं उनके हृदय में सूक्ष्म रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या होती है, वो नहीं चाहते हैं कि श्री कृष्ण को ये पद मिले कि वो परम भोक्ता हो, कहीं गहरे उनके हृदय में ये भावना होती है कि हम भी भोक्ता हैं, हम भी भगवान हैं, केवल कृष्ण ही भोक्ता क्यों हो जाएं। तो इसी तरह से हमें बाहरी विद्वत्ता से हमें गलत नहीं समझना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है ये बड़े विद्वान हैं, शायद इनको मालूम है कि कृष्ण कौन है, गीता क्या है। और एक बार यही भगवान आचार्य के पास में और एक व्यक्ति आए, ये व्यक्ति बंगाल से आए हुए थे, बड़े सज्जन ब्राह्मण थे, एक अच्छे कवि थे, बड़े संस्कृत के विद्वान भी थे, और जब वो जगन्नाथपुरी आए इस उद्देश्य से आए कि जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे और चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच में रहेंगे। इच्छा तो नेक था, अच्छी इच्छा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी भक्तों के संग में गीता और भागवत सुना नहीं था, इसलिए उनको अच्छे तरह से ज्ञान नहीं था कि वास्तव में जगन्नाथ जी कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, श्री कृष्ण कौन है। तो उनकी मुलाकात जब जगन्नाथपुरी में भगवान आचार्य से हुई तो भगवान आचार्य ने कहा कि ठीक है मेरे घर में आके रह जाओ, तो फिर वहां रहने लगे। और उस कवि ने कहा एक दिन भगवान आचार्य से कि मैंने एक नाट्य लीला लिखी है और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर और जगन्नाथ के ऊपर, तो कृपा इसका श्रवण करें। तो भगवान आचार्य ने थोड़े भक्तों को बुलाया और सबने सुना ये नाटक और सब उसकी तारीफ करने लगे, वाह 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 कितना सुंदर लिखा आपने, जगन्नाथ जी के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत प्रशंसा करने लगे उसकी। और फिर जब चाहे स्वरूप दामोदर के पास भगवान आचार्य फिर से आए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के पास मैं इन कवि को ले जाना चाहता हूं उनका नाटक सुनाने के लिए, लेकिन इसके पहले आप इसको सुनिए और अगर आप ठीक समझे तो फिर चैतन्य महाप्रभु के पास हम इसको ले जाएंगे। वैसे बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु को मिलने आते और इनमें से कई ऐसे लोग होते जो अपनी कविता का प्रदर्शन करना चाहते, जो अपने आप को विद्वान समझते या अपने आप को बड़ा कवि समझते, वो आके चैतन्य महाप्रभु के सामने अपनी ही विरचित जो पंक्तियां हैं वो सुनाने के इच्छुक होते, और चैतन्य महाप्रभु ये सुनते तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार इन ग्रंथों में या कविताओं में गलत सिद्धांत ये व्यक्ति पेश करते थे, रसाभास हो जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक कड़क नियम बनाया कि अगर किसी को मेरे सामने आकर कोई कविता, कोई भाष्य, कुछ भी सुनाना हो तो सबसे पहले स्वरूप दामोदर को सुनना चाहिए। अगर स्वरूप दामोदर ने हाँ कह दिया तब मैं ये कविता को सुनने के लिए तैयार होऊंगा। तो इस तरह से जब भगवान आचार्य स्वरूप दामोदर के पास आए तो उस समय स्वरूप दामोदर ने तुरंत फिर से डांटना शुरू कर दिया कि अरे तुम तो गोप हो, भोले भाले साधारण गोप हो, और तुम इधर उधर कोई भी आता है कवि कवि कहकर अपने आप को दार्शनिक समझाकर तुम उसके कवि सुनते जाते हो। कोई विवेक बुद्धि रखनी चाहिए कि किसका बात सुनना है, किसकी नहीं सुननी है। जो भी आए बोलता है मैं कवि हूं, उसकी कविता सुनने जाते हो, यह ठीक नहीं है। तो उस समय भगवान आचार्य ने कहा नहीं नहीं, ये कोई ऐसा वैसा कवि नहीं है, बड़ा विद्वान है और इसने जो कविता लिखी है इतनी सुंदर लिखी है, जगन्नाथ जी का गुणगान किया है, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया है, तो आप सुनिए तो सही, एक बार तो सुनिए। तो स्वरूप दामोदर ने मना कर दिया, लेकिन बार बार भगवान आचार्य उनके पास में आते। जब दो तीन बार आए तो स्वरूप दामोदर ने सोचा कि चलो ठीक है, जब भगवान आचार्य इतना मुझे बोल रहे हैं तो सुन ही लेते हैं। तो उस समय फिर वो कवि को बुलाया गया और उन्होंने अपनी कविता या अपना नाट्य लीला सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने एक श्लोक सुनाया। जब वो श्लोक सुनाया तो सारे उपस्थित भक्त, भगवान आचार्य और जो अन्य महाप्रभु के भक्त थे, सब ने कहा शाबाश शाबाश, कितना सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। केवल अकेले स्वरूप दामोदर वाहवा नहीं कर रहे थे, उनके चेहरे पर बड़ा क्रोध दिखाई पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत किया और फिर उस कवि से कहने लगे कृपा करके इस श्लोक का अर्थ समझाने का कष्ट करें। तो वो कवि ने कहा कि ये श्लोक का अर्थ ये है कि जगन्नाथ जी, इनका शरीर ये जो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है ये बड़ा सुंदर है, और इस सुंदर जड़ पदार्थ को पुनः जीवित करने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु वही हैं जिन्होंने इस जड़ पदार्थ को जीवित कर दिया है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु में और जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। तो भक्तों ने ये जब सुना उनको तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्वरूप दामोदर ने ये अर्थ सुना और कहने लगे अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, जितना मूर्ख मैंने समझा था उससे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि तुम तो सिद्धांत नहीं जानते, वास्तव में भक्ति क्या है तुम नहीं जानते, और नाट्य लीला कैसे लिखना है वो भी नहीं जानते, और तुम जैसे लोग तो समाज में इधर उधर घूमकर बड़ा उत्पात करते हैं, क्योंकि गलत सिद्धांत आप साधारण जो मासूम लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनके बीच में जाके प्रस्तुत करते हो, और क्योंकि तुम लोग थोड़े बहुत विद्वान हो, थोड़े कुछ संस्कृत बोल लेते हो, पढ़ लेते हो, इसे लोग आप में विश्वास करते हैं, तो आपकी भूल तो कई हैं इसमें, मैं तो केवल दो तीन भूल आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझे नहीं है कि जगन्नाथ जी कौन है। आपने सोचा है कि जगन्नाथ जी केवल लकड़ी हैं, लकड़ी की पुतली है, मूर्ति है, लेकिन जगन्नाथ जी तो स्वयं श्री कृष्ण है, उनमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यह भगवान की मूर्ति जो होती है यह कोई पुतली नहीं होती, ये तो प्रत्यक्ष साक्षात भगवान होते हैं, आपको यह मालूम नहीं है। और आपकी दूसरी गलती यह है कि आपने चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण जीव समझा है, जैसे कि हम सब हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण जीव नहीं है, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है। और ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण अभी जगन्नाथ जी के शरीर में प्रकट हुए हैं, प्रवेश किए हैं, नहीं, जगन्नाथ जी तो स्वयं श्री कृष्ण हैं और चैतन्य महाप्रभु भी वही कृष्ण हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल रूप का, केवल जगन्नाथ जी इस अद्भुत रूप में प्रकट हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वर्ण रंग में प्रकट हुए हैं। इसलिए कभी ऐसे आपको भेद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो आपने की है वो ये है कि आपने भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर दिखाया है। वास्तव में हमारे शरीर में और आत्मा में अंतर होता है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यते। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देहिनः अस्मिन, जो ये देह है ये जड़ पदार्थों से बना है और देह के अंदर जो निवास करता है उसको देही कहते हैं। देह और देही, देही आत्मा है और ये देह ये शरीर है। तो हमारे लिए देह में और आत्मा में बड़ा अंतर है, क्योंकि हमारा शरीर भौतिक है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है और हमारी आत्मा सच्चिदानंद है, भगवान श्री कृष्ण का नित्य अंश है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो तो पूर्ण सच्चिदानंद है, उनके शरीर में और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है। देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित। स्वरूप दामोदर ने पुराणों से सिद्ध कर दिखाया कि देखो भगवान श्री कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि भगवान का पूर्ण शरीर आध्यात्मिक है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। तो आप तो समझे ही नहीं हो। और इस प्रकार से बड़ा विस्तारित रूप से जब स्वरूप दामोदर ने व्याख्या की और उस कवि के भूल निकाले तो सारे वहां उपस्थित भक्त कहने लगे हाँ बिल्कुल सही कहा स्वरूप दामोदर ने, वास्तव में ये कवि ने सारे गलत चीजें बताई है। तो देखो साधारण जो लोग होते हैं संसार में इधर उधर बहुत बह जाते हैं। कोई भी आके कुछ भी कह देता है तो उसमें बह जाते हैं, दूसरा आके कोई विपरीत बात कहेगा उसमें बह जाते हैं। इसलिए सही परंपरा में भक्तों से सुनना बहुत आवश्यक है। तो पहले ये सारे भक्त कवि की प्रशंसा कर रहे थे कि सही सही है सही है, और अभी स्वरूप दामोदर की प्रशंसा करने लगे हाँ आप जो बोल रहे हैं सही है। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर ने सही सिद्धांत पेश कर दिखाया और इतना डांटा, इतने कड़क तरह से वो बोले कि बेचारे वो कवि को इतने शर्म आ गया कि अपना सर झुकाकर वो खड़े रह गए, वो कुछ बोल नहीं पाए। तो उनकी दशा देखकर स्वरूप दामोदर को कृपा आई, दया माया आग दया आगे भावना हृदय में। तो कहने लगे ठीक है, आपने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपको मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी सरस्वती देवी जो हैं वो बड़ी कृपालु हैं, तो आपके गलत शब्दों को लेकर उन्होंने सही तरह से कृष्ण के चरणों में आपकी कविता को प्रस्तुत किया है। जैसे कि जब इंद्रदेव ने कृष्ण की भर्त्सना की थी और शिशुपाल ने और जरासंध ने भी कृष्ण की टीका और निंदा की थी, तो सरस्वती देवी ने उनके भाषण को लेकर उसका अलग अर्थ देकर कृष्ण के चरणों में पेश कर दिया। तो उसी प्रकार से भगवान श्री सरस्वती देवी ने, जो कि विद्या की देवी हैं, उन्होंने आपके कविता को, आपके पंक्तियों को अलग अर्थ देकर, एक भक्ति के लिए अनुकूल अर्थ देकर भगवान श्री कृष्ण को प्रस्तुत किया है। तो इसलिए आप चिंता नहीं कीजिए, आप भक्ति में बने रहिए, भक्तों के संग में आइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से वो जो कवि, ब्राह्मण कवि आए थे बंगाल से, वो फिर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के संग में रहे और अपने सारे गलत विचारों को त्याग दिया, क्योंकि स्वरूप दामोदर ने उनको बहुत महत्वपूर्ण आदेश दिया था, जाओ वैष्णव स्थाने भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने। अगर तुम्हें भागवत जानना है, कृष्ण जानना है, तो वैष्णवों के संग में जाओ, वहां वैष्णव वहां भागवत पढ़ सकते हो। भागवत पढ़ना है तो किसी विश्वविद्यालय में या किसी मायावादी व्यक्ति से या शुष्क विज्ञानी से, विद्वान से हमें नहीं पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। यहां पर राधा गोकुलानंद मंदिर में हर रोज सुबह श्रीमद् भागवत के ऊपर क्लास होता है, प्रवचन होता है। उस श्रीमद् भागवत के टीका के ऊपर जिसकी तात्पर्य, अनुवाद, अर्थ इत्यादि भक्त वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किया है, जो कि वर्तमान काल के आधुनिक काल के बहुत बड़े विश्व आचार्य और गुरु हैं, जगत गुरु हैं, शुद्ध वैष्णव हैं। ऐसे शुद्ध वैष्णव के टीका को सुनकर पढ़कर वास्तव में हम श्रीमद् भागवत को और श्री कृष्ण को समझ सकेंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सुबह यहाँ रोज 7:45 जो भागवत के ऊपर प्रवचन चलता है उसका लाभ आकर आप ले सकते हैं। और इस तरह से स्वरूप दामोदर ने हम सब के लिए भी ये उपदेश दिया है, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य रे चरणे, कि जाके चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रय ले लो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ही इस कलयुग के अवतार हैं। उनका आश्रय लेकर ही हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया है और उन्होंने ये पद्धति सबके लिए बहुत आसान बनाई है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करके हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इधर उधर के प्रवक्ताओं से प्रवचन न सुनकर, इधर उधर के ग्रंथों के संस्थाओं के पुस्तकें न पढ़कर, केवल अगर हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमें श्री कृष्ण की भक्ति बहुत सरल रूप से, सहज रूप से हमें प्राप्त हो जाएगी और हमारा मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न आपके हो तो आप पूछ सकते हैं।
अगर कोई मायावादी है आदमी तो हमें उसे समझाना चाहिए कि नहीं, कि भगवान को, भगवान के सगुण रूप के बारे में समझाना चाहिए क्या, हमें उसको उसका संग नहीं करना चाहिए?
ये अच्छा प्रश्न है कि अगर हमें कोई मायावादी मिले तो हमें उसे समझाने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा दृष्टांत दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति को ऐसे बीमारी हुई है जो कि फैल सकती है तो हमें उसका संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी हाँ या ना में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर उसकी बीमारी बहुत ज्यादा है और हमारा स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं है तो जरूर हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर उसकी बीमारी इतनी तीव्र नहीं है और हम भी हृष्ट पुष्ट हैं तो थोड़े समय के लिए जा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति मायावाद है लेकिन बहुत कट्टर है और अपने शास्त्रों में बड़ा विद्वान है और हम थोड़े अपने शास्त्रों में हल्के फुल्के हैं, हमें कोई दो शब्द बोलेगा हम डावाडोल हो जाएंगे, अगर ऐसी परिस्थिति है तो हमें दूर रहना चाहिए उससे। अगर हमारी श्रद्धा भक्ति में इससे शक्तिशाली हो, उसकी श्रद्धा से जो कि उसको उनके शास्त्रों में है, तो फिर हम जा सकते हैं। लेकिन हम पहचान कैसे सकेंगे कि किसकी श्रद्धा ज्यादा शक्तिशाली है? स्वरूप दामोदर ने भगवान आचार्य को समझाया कि कोई महाभागवत भी हो तो मायावाद का भाष्य सुनकर उसका दिमाग फिर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सर्वनाश हो सकता है, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती ऐसे लोगों को, मायावादियों को शुद्ध कृष्ण भक्त बनाया। तो उनके पद चिन्हों में चलकर अगर हमें लगता है कि हमारे लिए कोई खतरा नहीं है और हम जाके उनको अच्छी तरह से समझा सकते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि एक बार हम मायावाद भाष्य सुनना हमने आरंभ किया तो इतनी गहराई से हमारे हृदय में बैठ जाती है ये बात कि भगवान निराकार है, इसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। हमने एक ऐसे कई भक्तों को हम भक्तों से मिले हैं, उनमें से एक भक्त हैं तो 25 साल से हमारी संस्था में हैं, और वो एक दिन हमें बता रहे थे कि इतने साल हुए हमारे संस्था में, हम भक्ति अच्छी तरह से कर भी रहे हैं लेकिन ये बात हमारे हृदय से जाती नहीं है जो हमने 25 साल पहले तक सुनते आए थे। भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति हैं, इस बात की श्रद्धा अभी तक मेरे हृदय में दृढ़ता से नहीं आती। हमें यही लगता है कि निराकार ही होना चाहिए, व्यक्ति कैसे हो सकते हैं भगवान। देखिए 25 साल भक्ति करने के बाद में, क्योंकि वो जो विष था इतनी गहराई से उनके हृदय में चला गया था कि उसको निकालना बहुत कठिन हो गया था। और एक भी भक्त थे, हमें याद है, पहले मायावादी भाषण सुनने के लिए जाया करते थे, फिर धीरे धीरे जब कृष्ण भावना का पथ के पथ पर आए, इस कौन के भक्तों से मिले, चर्चा करते रहे, उनको कितना कष्ट हुआ उनके पुराने विचारों को त्यागने के लिए। हमें याद है ऐसे भक्त से हम घंटों घंटों बैठ के चर्चा करते थे, एक एक पॉइंट लेकर, एक एक पॉइंट लेकर, फिर घूम फिर के वही पॉइंट। इसलिए बहुत कठिन होता है, एक बार जब बस जाता है हृदय में तो छोड़ने का नाम नहीं लेता। इसलिए बेहतर तो ये है कि हम उनको बोले कि आप आकर मंदिर में संग कीजिए, प्रवचन सुनिए, प्रभुपाद की किताब पढ़िए। उनको प्रभुपाद की किताब देना अच्छा है, ताकि अगर वो पढ़ेंगे तो धीरे धीरे से हो सकता है परिवर्तन हृदय में हो जाए। और अगर दो चार शब्द कुछ बोलने हो तो ठीक है, लेकिन हमें पहचान लेना चाहिए कि जब हमारी आध्यात्मिक, हमारा स्वास्थ्य अगर खतरे में है तो वहां से हमें दूर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी है। और इसमें खतरा दुगना क्यों हो जाता है, क्यों हम पहचान नहीं सकते हैं कि बाहर के लोगों में से कौन मायावादी है कौन नहीं है। हमें जानना चाहिए कि 99% जो भी आध्यात्मिक विषय के ऊपर बात करते हैं या कर सकते हैं वो मायावादी होंगे, 99%। शुद्ध भक्ति के सिद्धांत केवल वही व्यक्ति प्रस्तुत कर सकता है जो कि प्रामाणिक भक्ति के गुरु वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा हो। इसके सिवाय ये बहुत कठिन है ऐसे व्यक्ति को पाना जो कि इस शुद्ध भक्ति के सिद्धांत को, कृष्ण के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करेगा। भले वो बाहर का आदमी कृष्ण के बारे में कितना कुछ ना बोलता हो, और भले ही वो नाम संकीर्तन के अंदर वो रुचि भी क्यों ना दिखा रहा हो, लेकिन सूक्ष्म रूप के उसके हृदय में यही भावना रहेगी। लेकिन साधारणतः जो मासूम लोग हैं, जो ईर्ष्यालु नहीं है, जिन्होंने केवल ऐसे ही सुना है, जिनको ज्यादा दृढ़ विश्वास नहीं है कि भगवान क्या है, नहीं ज्यादा ज्ञान है, ऐसे लोगों को अगर बोलेंगे तो फिर ठीक है। तो उनके अंदर जो जोड़ी दो चार बातें उन्होंने सुनी है, शायद वो भी धुला सकते हैं हम। तो निष्कर्ष क्या है कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले प्रभुपाद की पुस्तक देने चाहिए और उनको मंदिर में बुलाकर प्रवचन कीर्तन में शामिल होने के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। थोड़ा बहुत अब हृदय धुल जाएगा तो वास्तव में सही सिद्धांत सुनने के लिए थोड़ा बहुत उनकी तैयारी हो जाएगी।
ऐसे भक्त बन गए बाद में मायावाद से, क्या उनका हम नाम जान सकते हैं?
उनका नाम नहीं दिया है चैतन्य चरितामृत में, ऐसे ही कहा है कि बंगाल के एक कवि थे, तो कह लीजिए उनका नाम कृष्णदास हो गया, अंत में वो कृष्णदास बन गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका नाम नहीं बताते चैतन्य चरितामृत में। हाँ जी, ऐसे ही पूछिए प्रश्न खड़े होकर, हाथ ऊपर कीजिए जिनको प्रश्न करना है ताकि आपको देख सके। यहाँ किसी को प्रश्न करना था?
प्रभु जी, हर एक संप्रदाय में जो सबके ऊपर गुरु रहते हैं उनको अवतार बताते हैं, तो हालांकि सब उस बोलते हैं कि शास्त्र में लिखा है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये अवतार है या नहीं?
भारत में हर शहर में दो तीन अवतार तो निश्चित है ही, इसलिए अवतार कौन है क्या है इसको जानने के लिए हमें प्रभुपाद की किताब अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए, शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। केवल अगर आकर यहां प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे और यहां सत्संग में कीर्तन में प्रवचन में भाग लेंगे, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तव में अवतार कौन है, किसको बोलते हैं अवतार, उनके लक्षण होने चाहिए, या उसके अंदर थोड़े बहुत योग की सिद्धियां आ गई, थोड़े बहुत विभूति उसने बनाई कहां से, थोड़ा सोना इधर से निकाल लिया, उसको भगवान कहेंगे अवतार कहेंगे, ये गलत बात है। क्योंकि लोग ये नहीं जानते हैं कि वास्तव में भगवान कौन है, अवतार क्या है, इसलिए वैसे बोलते हैं। उस दिन हम यहां से मीरठ जा रहे थे ट्रेन में, तो एक व्यक्ति मिले और बोल रहे थे कि तपस्या करने के बाद हम भगवान हो जाते हैं। अरे ये कैसे होता, ऐसी तपस्या कर दिए शक्तिशाली हो गए तो हम भगवान बन गए? मतलब इसका मतलब है कि लोगों को भगवान क्या है ये नहीं मालूम। सोचते हैं कि कोई भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली हो गया भगवान हो गया। भगवान बनाया नहीं जा सकता, ऐसी कोई कारखाना नहीं है जिसमें जाके आप भगवान बन सके। भगवान है और पहले से है और हमेशा वही रहेंगे भगवान, और कोई भगवान नहीं बन सकता। ये जो भगवान है ये कोई पद नहीं है, जैसे कि प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, ये पद है। आज कोई व्यक्ति है कल दूसरे कोई होंगे, लेकिन भगवान ये कोई पद नहीं है कि कल कोई और था आज कोई और है कल और कोई होगा, ऐसे नहीं। कोई भगवान बन नहीं सकता, जो भगवान है और जो हुए हैं वही भगवान रहेंगे, और वही श्री कृष्ण है और उनके अलग अलग अवतार जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में वर्णन है आता है। तो ऐसे ही अवतारों को हमें मानना चाहिए। ठीक है अमोदर, एक ब्रह्मचारी थे, अपने बचपन से ही घर छोड़ दिया था और बड़े तपस्वी थे, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त भी थे वो। और जब उन्होंने सुना कि अभी वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो उनका संग लेने के लिए वो जगन्नाथपुरी में आए और चैतन्य महाप्रभु ने उनको तुरंत स्वीकार कर दिया। और फिर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये दो व्यक्ति हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहा करते थे। खास करके चैतन्य महाप्रभु के अंत के जो 12 वर्ष की लीला थी, जिसमें चैतन्य महाप्रभु किसी और से मिलते नहीं थे, तब ये दो हमेशा महाप्रभु के साथ में रहा करते थे।
इस्कॉन में इतना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग होता है कि दूसरों को सबको आप लोग नीचा मानते हो, तो क्या उनको कैसे समझाया जाए?
हाँ, शक्तिशाली प्रचार तो इस्कॉन में होता है, लेकिन किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता है। जो सत्य है वही बोला जाता है, व्यक्तियों की दृष्टि से नहीं लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से। जो गलत सिद्धांत है, जो गलत दर्शन है, उसको सिद्ध करना, उसको दिखाना समाज के सामने, वो हमारा कर्तव्य है। जैसे कि अभी पिछला प्रश्न था कि अवतार है, अभी समाज में सभी लोग बोलते हैं ये अवतार है वो अवतार है, तो क्या हम सच नहीं बोले? हम इस झूठ को हम ऐसे ही चलते रहने दें कि हम किसी की निंदा नहीं करते हैं? कोई चोर आए, डाकू आए, चोरी करके चला जाए, बोले हम निंदा नहीं करेंगे किसकी? नहीं। जो पाप या जो गलत विचार है उसका खंडन करना ये तो बहुत आवश्यक है। जो लोग भगवान को के व्यक्तित्व को नहीं मानते, भगवान है ही नहीं, हम भगवान, आप भगवान, हम सब भगवान हैं, ऐसे दुष्ट विचारों का खंडन तो करना चाहिए। और जो बोलते हैं मैं अवतार हूं भगवान का, मुझे पैसे दो फिर मैं भी तुम्हें भगवान बना दूंगा, ऐसे लोग, इनको भी खोलकर दिखाना चाहिए समाज में कि ये लोग भी दुष्ट हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण को गलत समझते हैं, उनके गलत विचार को भी गलत साबित करके दिखाना चाहिए, और जो सत्य है उसको समाज में पेश करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए इसमें किसी व्यक्ति को नीच दिखाने का सवाल नहीं आता, केवल सत्य को सही तरह से प्रस्तुत करने का प्रश्न आता है, और वो हम सबका कर्तव्य है। जब हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो हमें ऐसे कभी मायावादी मिलते हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? हमें उनको किताब देना चाहिए, और अगर वो ज्यादा विद्वान लग रहे हैं, कुछ ज्यादा कुछ फुटफाट कुछ बोल रहे हैं, तो उनको किताब देकर आ जाना चाहिए। ज्यादा उनसे चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से ज्यादा तर्क करना भी समय बर्बाद करना है, और हो सके अपना ही श्रद्धा को वो हिला दें। तो वो संशय हमारे मन में आ जाएगा, अरे वो व्यक्ति ने बोला ऐसे बोला कि कृष्ण हो ही नहीं सकते व्यक्ति, क्या ये सही है? फिर मन में वो बात चलती रहेगी। तो अच्छा है कि उनके हाथों में किताब थान दें, लक्ष्मी ले लें और उधर से निकल जाएं। और उनको बोला कि आइए आप मंदिर में, उनको प्रसाद दें और संकीर्तन में आकर धीरे धीरे उनका हृदय जब शुद्ध हो जाएगा और ऐसे प्रवचन सुनते सुनते फिर उनका मन तैयार हो जाएगा सही सिद्धांत सुनने के लिए। कभी कभी जो ऐसे विद्वान लोग होते हैं बड़े घमंडी होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी हालत में वो अपने आप को सही साबित करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो आप अच्छी कोई बात बोल भी रहे हैं तो सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए भक्तों का समय बहुत मूल्यवान होता है, तो ऐसे लोगों के साथ में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारी बातें सुनने के लिए तैयार है, दो चार बातें मायावादी के कह देता है लेकिन फिर भी हमारी बातें सुनने के लिए अगर तैयार हो तो फिर कोई परवाह नहीं है। फिर दो चार शब्द हम भगवान के बारे में उनको सुना सकते हैं और कह सकते हैं कि आप पढ़िए, ऐसे मीठी बातें करके हम आ सकते हैं वापस।
और जो ओम का उच्चार करते हैं और गायत्री मंत्र का उच्चार करते हैं और वो शास्त्र में ऐसे दिखाते हैं कि ये है ब्रह्म ज्योति है, इसमें हम जाना चाहते हैं, तो उनको क्या भगवान की प्राप्ति होगी ऐसे?
अगर उन्होंने अपनी साधना में परिपूर्णता प्राप्त कर ली है तो उनको निराकार की प्राप्ति होगी। जो जैसी उपासना करता है उसको उस गति की प्राप्ति होगी। यान्ति देवव्रता देवान पितृन, यान्ति पितृव्रता भूतानि, यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद्याजिनोपिमाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको देवलोक की प्राप्ति होती है, जो पितरों की पूजा करते हैं उनको पितृलोक की प्राप्ति होती है, जो भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं वो भूत प्रेत के संग में चले जाते हैं, और जो मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे पास चले जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। उसी तरह से जो निराकार की उपासना करते हैं वो निराकार में लीन हो जाएंगे।
जो है असलियत है तो इसको मायावाद नहीं कर सकते, ऐसा बताते हैं?
नहीं, भगवान का निराकार स्वरूप अवश्य है, लेकिन निराकार का उद्गम क्या है? जैसे सूरज निराकार है या सूरज का कोई आकार है? अभी हम यहां बैठे हैं ना, हम सूरज को देख रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं, सूरज की किरणें हैं, बाहर इतना प्रकाश है, क्यों है? क्योंकि सूरज है, सूरज की किरणें हैं। तो सूरज की किरणों में और सूरज में क्या अंतर है? है भी और नहीं भी। लेकिन ये सूरज की किरणें कहां से आ रही हैं? सूरज से आ रही हैं, सूरज का गोला जो है उससे आ रही हैं। अगर सूरज को समझना है तो सूरज के गोले को समझना चाहिए और सूरज की किरणों को समझना चाहिए। यह पूर्ण भगवान ये सूरज है। तो ठीक उसी प्रकार से निराकारवादी जो लोग होते हैं केवल निराकार की बात करते हैं, जैसे कि किरणों के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो निराकार आता कहां से है? ब्रह्म तेज वो प्रकाश कहां से आता है? हर प्रकाश का कोई उद्गम होता है। यहां रोशनी आ रही है तो वहां बल्ब से आ रही है, वहां प्रकाश है तो सूरज से आ रहा है, तो ब्रह्म तेज कहां से आ रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा, तो वो है कृष्ण। भगवत गीता के 14वें अध्याय में बताया है श्री कृष्ण ने, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, मैं निराकार ब्रह्म का उद्गम हूं। यह ब्रह्म ज्योति जो है भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का तेज है। इसलिए जो निराकारवादी लोग मानते हैं कि भगवान निराकार है वो गलत नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान अधूरा है, अपूर्ण है। वो ये नहीं जानते हैं कि निराकार के परे भी एक व्यक्ति हैं श्री कृष्ण, जो कि उस निराकार के उद्गम हैं। और इसलिए ईशोपनिषद में एक भक्त प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेण पात्रेण सत्य सापहितं मुखम तत्त्वं पूषमपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, कि हे भगवान, ये जो आपका निराकार तेज है इतना प्रभावशाली है, इतना शक्तिशाली है कि इसकी वजह से मेरे आंखें अंधे हो रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहा हूं, तो कृपा करके इस निराकार तेज को हटाइए और आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन मुझे करने दीजिए। इसलिए जो व्यक्ति केवल निराकार से प्रभावित होते हैं वो निराकार के आगे या उसके पीछे क्या है वो नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि निराकार एक पर्दा है, इस पर्दे के पीछे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके निराकार तेज में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें आप चाहिए जो कि इस निराकार के उद्गम है।
अरे बोल, जो है निराकार जो है वो भी एक आध्यात्मिक लोक में ही आ जाता है।
बिल्कुल, वो भी आध्यात्मिक ही
तो है। तो आध्यात्मिक के जो जगत में जो जाते हैं तो फिर नहीं आते, ऐसा सुना जाता है। तो फिर आ सकते हैं इधर, क्या वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं?
वास्तव में आध्यात्मिक जगत में ये ब्रह्म ज्योति भी है और ब्रह्म ज्योति के भीतर आध्यात्मिक लोक भी है, वैकुंठ लोक। जिस प्रकार से ये ब्रह्मांड के भीतर जो भी ग्रह है, लोक है, वो सूरज के किरणों में घूम रहे हैं, बराबर है। तो उसी प्रकार से भगवान के धाम में अनेक लोक हैं और ये सारे लोक आध्यात्मिक हैं, सच्चिदानंद हैं, और वहां पर भी ये निराकार स्वरूप है, ब्रह्म तेज, ब्रह्म ज्योति है। और जो जीव उस ब्रह्म ज्योति में जाते हैं वो भगवान के संग को प्राप्त नहीं कर सकते, वो केवल इस ज्योति में जाके एक अणु के बराबर रह जाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो निराकार के परे जो वैकुंठ लोक होते हैं उसके अंदर जाते हैं और भगवान और उनके भक्तों के संग में शाश्वत जीवन और आनंद की प्राप्ति करते हैं। ये अंतर होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा शहर है जिसके इर्द गिर्द बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जैसे कि पुराने जमाने में किले हुआ करते थे, और इस किले के भीतर जो कि बहुत बड़ा है बहुत सारे सुंदर सुंदर महल हैं, कई महल हैं, अनगिनत महल, और इन महलों के बीच में केवल सड़कें हैं, बस कोई दुकानें नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारे महल। तो कई व्यक्ति इस किले के अंदर जाते हैं, थोड़े व्यक्ति किले के भीतर जाकर इन सुंदर सुंदर महलों के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां आराम करते हैं, मजा करते हैं। थोड़े लोग किले के अंदर प्रवेश तो करते हैं परंतु महलों के अंदर प्रवेश करने के लिए उनको अनुमति नहीं है, केवल सड़कों पर भटकते रहते हैं। तो ये किला ये आध्यात्मिक जगत है, ऐसे तुलना, एक दृष्टांत दे रहे हैं। और उसके अंदर जो महले हैं वो भगवान के वैकुंठ लोक हैं, आध्यात्मिक लोक। और जो सड़कें हैं मतलब महलों के बाहर लेकिन किले के अंदर जो जगह है वो निराकार ज्योति है। जो व्यक्ति उस महल के अंदर प्रवेश कर सकता है किले के भीतर वो भक्त है। निराकारवादियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलती महल के अंदर, वो आध्यात्मिक जगत में गए हैं लेकिन केवल निराकार में ही पड़े रहते हैं, और इसलिए वो रस का आस्वादन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी समझाया करते थे कि अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको 100,000 साल जीने का वरदान दे सकता हूं लेकिन आपको अकेले इस कमरे में कुर्सी के ऊपर बैठना होगा, या तो फिर आप 50 साल 60 70 80 साल जिए लेकिन जो जीवन का तनाव होता है उसमें आप जीरिए, आप कौन सा वरदान स्वीकार करेंगे? आप बोलेंगे 50-60 साल थे सही, लेकिन समाज में रहेंगे, कुछ आदान प्रदान प्रेम का होगा, कुछ झगड़े करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन कम से कम लोगों के बीच में रहेंगे। अभी 10,00,000 साल रहे, अकेले रहे, तो क्या मजा है इसमें? कोई रस नहीं, किसी व्यक्ति के साथ में कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं। तो इसी प्रकार से जो जीव भगवान के धाम में जाकर उनके लोक में, वैकुंठ लोक में चले जाते हैं, वो भगवान के साथ संग करते हैं, लीला करते हैं शाश्वत अनंत काल तक। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं जिनको वैकुंठ लोकों में प्रवेश नहीं है, केवल निराकार में प्रवेश है, वो लंबे समय तक ज्योति में पड़े रहते हैं, कण मात्र आत्मा स्वरूप में, लेकिन फिर उब जाते हैं। वहां उनको शांति मिलती है लेकिन आनंद नहीं मिलता है, इसलिए फिर से उनका पतन होता है, फिर से भौतिक ब्रह्मांड में चले आते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ऐसी प्रार्थना करते हैं, येन्य रविन दाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यदो अनादृत युष्मदांग्रयः। वो कहते हैं कि हे अरविंदाक्ष श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण जिनके आंखें कमल के समान हैं, जो व्यक्ति निराकार को मानते हैं, विमुक्त मानिनः, सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन उनकी भावना क्या है, अविशुद्ध बुद्धयः, उनकी बुद्धि अभी तक प्रदूषित है। क्यों? वो बहुत बड़ी तपस्या करते हैं, आरोही कृच्छ्रेण, बहुत कष्ट उठाते हैं, कड़ी तपस्या कई सालों तक करते हैं और सोचते हैं परम पदम ततः, कि मैंने परम पद की प्राप्ति कर ली है, मैं मुक्त हो गया, निराकार की उपासना करके सबसे ऊंचे पद की प्राप्ति मैंने कर ली है, ऐसे वो सोचते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, पतन्ति अधः, उनका पतन हो जाता है, नीचे की ओर आते हैं। क्यों पतन हो जाता है? पतन्ति अधः अनादृत युष्मद अंघ्रयः, अंघ्री मतलब चरण कमल। पिछले रविवार को आपने पंकज अंघ्री प्रभु का प्रवचन सुना ना, अंघ्री मतलब चरण, पंकज मतलब कमल, पंकज अंघ्री मतलब वो व्यक्ति जिनके कमल जैसे चरण है, पंकज अंघ्री, अंघ्री। तो अनादृत युष्मत अंग्रयः, तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, ये लोग हालांकि निराकार की प्राप्ति करते हैं लेकिन फिर भी इतनी तपस्या करने के बाद उनका पतन हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों का अनादर किया है, आपके व्यक्तित्व को उन्होंने नकार दिया है, वो मानते नहीं है कि आप व्यक्ति हैं, इसलिए भक्ति का रस वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं निराकार में। हालांकि कोई भौतिक संसार का क्लेश नहीं है उनके पास, लेकिन आनंद भी नहीं है, इसलिए वो लौटकर यहां पे चले आते हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं वो समझते हैं कि भगवान का निराकार स्वरूप भी है और साकार स्वरूप भी है, लेकिन साकार जो स्वरूप है वो मूल स्वरूप है, जैसे कि सूरज का गोला मूल स्वरूप है। ठीक है,
वो जो ओम बोलते हैं, जो गायत्री मंत्र है, उसका अर्थ सब लोग जानते हैं कि हम भगवान के ध्यान कर रहे हैं, अथवा हम भी दास है जब ओम का अर्थ होता है, तो ऐसा नहीं जान सकते कि हम भगवान के ध्यान कर रहे हैं कि दास के भावना में कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझ सकते।
गायत्री मंत्र की का अर्थ वास्तव में जानते हैं कि नहीं, यह भी प्रश्न है, और ओमकार का मंत्र भी जानते हैं कि नहीं, यह भी प्रश्न है। वास्तव में भगवान तो श्री कृष्ण गीता में तो स्पष्ट बताते हैं, प्रणवोहम, मैं प्रणव हूं ओमकार, तो ओमकार भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है, लेकिन उस तरह से संबोधित करता है जैसे कि हम किसी को कहें महोदय, सर, एक उसमें व्यक्तित्व का इतना प्रश्न नहीं आता, लेकिन जब हम कृष्ण कहते हैं, गोविंद कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं, तो ये कृष्ण का नाम है, निजी नाम है, केवल साहब या सर या महोदय, ओंकार वैसे हो गया। लेकिन कृष्ण जब हम किसी व्यक्ति को उसके नाम से बुलाते हैं, इसलिए इसमें मिठास ज्यादा है। तो इसलिए जो लोग निराकार को ज्यादा पसंद करते हैं तो वो ऐसे ओंकार इत्यादि इसमें ज्यादा रुचि लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है उसके भीतर ओंकार आ जाता है, क्योंकि जहां पर कृष्ण का नाम होता है वो कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए कृष्ण वहां होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त को ओंकार की अलग जाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी कभी कभार हम बोल देते हैं, जैसे प्रवचन की शुरुआत में हम कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है। फिर संबोधित करने के बाद फिर उनका नाम क्या है वो बताया जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत की शुरुआत इससे होती है ओम नमो भगवते, ओम हम उन परम सत्य को प्रार्थना करते हैं, भगवते उस भगवान को जिनका नाम क्या है वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो जिनका नाम है वासुदेव, ऐसे परम सत्य को हम संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमकार और गायत्री मंत्र बोलने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब तक उनको भगवान का नाम का उच्चारण करने के लिए रुचि नहीं लगती तब तक वो वैकुंठ लोक में तो नहीं जा सकेंगे, भगवान के लोक में जाकर उनका निजी संग प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम